situación. मीडियम प्रदर्शनी का नाम भी बदल जाएगा एक दिन, जो क्लियर नाम होगा वो बदली करेंगे समझाने के लिए, फिर भी पढ़ते हैं। 21-268 की वाणी का दूसरा पेज, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाई जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं वो भी समझाना पड़ेगा। 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर सभी सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा है। सभी के लिए एक ही याद की यात्रा है सतो प्रधान बनने के लिए, और ये रियल यात्रा है। वो भक्ति मार्ग की यात्राएं होती है, और ये है ज्ञान मार्ग की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राओं में स्थूल रूप से भागते रहते हैं, देह का भागना करना हो जाता है, और ज्ञान मार्ग की यात्रा में भाई को भगाना पड़ता है, मन बुद्धि रूपि आत्मा को भगाना पड़ता है। हम जावेंगे अपने घर, जा करके फिर राजधानी में आना है। वो भक्ति मार्ग वाले तो यहीं इसी दुनिया में धक्के खाते रहते, न शांति धाम जाते और न सुख धाम जाते हैं, सुख धाम के दुख धाम में ही वापस लौट आते। हमको तो अपना राज्य था, और बाप की श्रीमत पर हमने ये राज्य लिया था, फिर माया ने हराया। हरेक की बुद्धि में याद रहेगा तो इन बातों का नशा रहेगा। हम युद्ध के मैदान में, अभी हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये तो जैसे सहज बात हो गई है। राज्य लेना और राज्य गंवाना, हिंसक युद्ध करते करते राज्य गंवाते आए, और अभी अहिंसक युद्ध करते करते राज्य ले लेंगे। बाहुबल का युद्ध किया तो राज्य गंवाया, और अभी योग बल से हम राज्य को प्राप्त कर लेंगे। बाहुबल वाले फिर भी राज्य को गंवा लेंगे, और योग बल वाले राज्य पा जाएंगे। दुनिया को पता नहीं है कि हम कैसे हराते हैं, पता है? दुनिया को नहीं पता है कि बाहुबल से हम हराते हैं और योग बल से हम जीतते हैं। बाप ने समझाया है, माया भी कितनी शक्तिवान है। इस समय तुम बाप को याद करने से शक्ति पाते हो माया पर जीत पाने की, और तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। इस समय संगम युग में तुम जितना जितना बाप की याद में रहेंगे तुम्हारी आयु लंबी होती जाएगी। जो सबसे जास्ती याद करेंगे उनकी सबसे लंबी आयु होगी, कम याद करेंगे उस पहले जन्म में जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म है जो सतयुग तक चलेगा उनकी कम आयु हो जाएगी। जितनी कम आयु हो जाएगी उतनी आत्मा तब पावरफुल बनेगी। समझा जाता है कि उन्होंने याद कम किया, भी बड़ी होती है और पवित्रता की ताकत भी बढ़ती है। तो भेंट की जाती है कलयुग और सतयुग की। कलयुग में कम आयु वाले और सतयुग में बड़ी आयु वाले होते हैं। क्या अंतर है? कलयुगी मनुष्यों में और सतयुगी मनुष्यों में क्या अंतर हो जाता है जो उनकी आयु कम और उनकी आयु लंबी? सतयुगी मनुष्यों की आत्मिक स्टेज अच्छी होती है और कलयुगी मनुष्यों की आत्मिक स्टेज कच्ची रहती है, होती ही नहीं। देवान ही देवान होता है, इसलिए आयु कम हो जाती है। तो भेंट संगम पर की जाती है। बाप संगम युग पर ही आते हैं। जो संगम युग पर नहीं होते वो भेंट को भी नहीं जानते, वो कंपैरिजन को जानते ही नहीं। ये तो तुम ही समझा सकते हो। सतयुग और कलयुग की कंपैरिजन तुम्हारी बुद्धि में है। करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से माला कितनी छोटी बनती है। ये माला रूपी संगठन कौन बनाता है? माला को संगठित करने वाला कौन है? कहते हैं कि प्योरिटी से यूनिटी बनती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का परम धाम से आए थे तो उन्हें भी तो प्योरिटी थी, नहीं थी? प्योरिटी थी, लेकिन उनकी प्योरिटी में और परमपिता परमात्मा शिव की प्योरिटी में जमीन आसमान का अंतर। उनकी प्योरिटी एक जन्म में ही संग के रंग से नीचे ढसर जाती है और परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम युग पर एक ही बार आते हैं और वो सदा शिव कहे जाते हैं। उनकी प्योरिटी एवर प्योरिटी रहती है, कभी नीचे गिरती ही नहीं। तो देखो 500-700 करोड़ मनुष्यों में माला कितने धोरों की बनती है। ऊंचे उतार में थोड़े ही पास होते हैं। यहां भी ऐसे है। ICS और PCS सब पास कर लेते हैं या पास करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी होती है। अगर सब पास कर ले तो सब बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं। बन सकते हैं क्या? नहीं। पढ़ाई पढ़ने का मापदंड जिनका ऊंचा होता है वो ही ऊंची पढ़ाई पढ़ पाते हैं। तो माला भी नंबरवार बनती है। माला था संगठन, ऊंचे से ऊंचा संगठन, फिर मीडियम संगठन, फिर नीचे दर्जे के संगठन। उन संगठनों की याद जा रहे हैं मालाएं, फर्स्ट क्लास माला, सेकेंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। सतयुगी दुनिया में थर्ड क्लास माला में कितने होंगे? 4.5 लाख होंगे। तो जन्म देने वाले रचयिता की स्टेज में होंगे, उनको कहेंगे थर्ड क्लास प्रजा। पहले अगले जन्म की प्रजा में भी कोई खसूसियत होती है। ये विशेषता और जन्मों की प्रजा में नहीं होती, वो है डायरेक्ट बाप के बच्चे। प्रजा माना ही बच्चे, आखिरी पुरुषार्थ करते करते एक बाप से ही प्रभावित होते, और कोई मनुष्य मात्र से प्रभावित होने वाले नहीं है। आखिरी माने एट लास्ट, लेटेस्ट, कोई से भी लिखत में तुम पूछ सकते हो, पहले तुम जैसे बेबियां थे, आस्ते आस्ते अब पढ़ते जाते हो और समझाते जाते हो। समझने और समझाने में मेहनत तो लगती है ना, समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आत्मा 84 जन्म कैसे लेगी, इतनी छोटी आत्मा है उसमें ड्रामा का सारा पार्ट भरा हुआ है। बातें तो बहुत सहज हैं समझने की, बाप जो समझाते हैं वो ही राइट है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र समझाते हैं कुछ न कुछ उसमें अपना मिक्स कर देते। हम भारतवासी राजाई में थे, अभी आयरन एज में आ गए, फिर जरूर गोल्डन एज के बनेंगे। तुम लिखते भी ऐसे हो, तुम देवताओं के पुजारी हो तो जरूर देवता धर्म के, क्या देवता धर्म के पुजारी क्या बनेंगे, देवता धर्म के बनेंगे, भूत प्रेतों के पुजारी क्या बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे और गॉड इज वन, गॉड को भगवान कहा जाता है, और जो एक बाप भगवान के पुजारी हैं वो क्या बनेंगे, भगवान भगवती बनेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, तो तुम अपन को सिर्फ देवता क्यों नहीं समझते हो, क्योंकि पतित बन पड़े हो। हार तो वही है, सिर्फ तमो प्रधान बन गया है। तो पहले सतो प्रधान झाड़ था सतयुग में, वही झाड़ा भी है, पहले सतो प्रधान था कम जनसंख्या की, और अभी तमो प्रधान बना है तो पत्ते बहुत हो गए, ताल तालियां बहुत हो गई है। तो ये खेल है ही पवित्र और अपवित्रता का। पतित जब बनते हैं तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, हे बाबा आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि हे बाबा आओ और आकर के हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं या पति से पावन बनने के लिए बुलाते हैं, पति से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में आए और ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो ज्ञान सुना के चले गए और काम पूरा हो गया। ज्ञान साधन है इस बात का, ज्ञान जल है, जल से क्या किया जाता है, कपड़ा साफ किया जाता है। ये भी शरीर रूपी वस्त्र है। आत्मा को भी ज्ञान जल से साफ किया जाता है। आत्मा जब शुद्ध बन जाती है तो पांच तत्वों का शरीर भी शुद्ध चाहिए। शिव बाबा का नाम भी है, क्या नाम है? शिव बाबा का नाम भी है, क्या नाम है? शिव बाबा बोला क्या? सिर्फ शिव बाप नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, शिव बाप का नाम भी है। शिव बाप का नाम तो शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है, तो शिव बाबा का नाम क्या है? शिव तो बिंदु का नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम है। फिर बिंदी जब शरीर बदलती है, शिव बाबा कही जाती है, तो उनका नाम क्या है? नहीं मालूम है? शिव बाबा का नाम ही नहीं मालूम? ब्रह्म। शिव बाबा का नाम है ब्रह्म। अरे शिव बाबा का नाम बड़ी अम्मा है, बड़ी अम्मा के रूप में जन्म दे के पालना दे के चली जाती है, काम खत्म है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, शिव बाबा का कोई खास नाम है कि नहीं? जो नाम सिर्फ एक देवता के साथ जोड़ा जाता है, और किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता। ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता, विष्णु के साथ नहीं जोड़ा जाता, 33 करोड़ देवताओं में से कोई के भी साथ शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई कंपनी बनाते हैं, एंट्रेंस कंपनी बनाते हैं ना, तो बच्चे के साथ बाप का नाम जोड़ा जाता है ना। ये भी पतितों को पावन बनाने की कंपनी है एंडसंस, जिसके साथ नाम जोड़ा जाता है, जो एक नाम पक्का पड़ जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, क्या शिव नाम पहले और शंकर नाम बाद में? शंकर शिव क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो शिव जो पहला है, जो बड़ा है, बाप तो बड़ा ही होता है, बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। परंतु बच्चों के बीच में बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे को बाप समान कहा जाता है। तो बोला शिव बाबा का नाम भी है, भी कब लगाया जाता है? शिव नाम तो है ही, परंतु वो शरीर का नाम नहीं है, वो कभी बदलता नहीं, वो तो बिंदु का नाम है। नाम कब पढ़ते हैं? शरीर के ऊपर पढ़ते हैं, काम के ऊपर पढ़ते हैं, और काम शरीर के द्वारा होता है कि बिंदी खुदक खुदक के काम कर लेती है, शरीर के द्वारा ही काम होता है। तो वो शरीर का नाम क्या है? इसमें शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करके पतितों को पावन बना है। ब्रह्मा तो नहीं, ब्रह्मा के द्वारा पतितों को तो पावन ज्ञान सुना के तो नहीं बनाया। तो मेरा नाम भी है, कौन सा नाम है? है पतित पावन गाते हैं सीताराम, तो एक है पतित पावन या दो है पतित पावन? दो है। राम निराकार को ही कहा जाता है या साकार को भी कहा जाता है? सबका सदगति दाता राम कहते हैं, सबका सदगति दाता सदगुरु एक है, निराकार शिव राम जब ऊपर से आता है तो किसी में प्रवेश करता है? साकार राम में आता है या निराकार में? साकार में। तुम सब सीताएं हो और मैं हूं राम बाप, मेरा बाप कोई नहीं। क्या ये कौन कहता है? ये शिव का काम है, बाबा भी नहीं। शिव का बाप कोई नहीं, कोई पति तो पावन, परंतु उसके लिए चाहिए शरीर। संग का रंग लगाने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। शरीरों के ही संग के रंग में आते आते सब मनुष्य मात्र पति तो बन पड़े। अनेकों के संग के रंग में आए तो पति तो बने, और एक ऊंचे ऊंचे बाप के संग के रंग में आने से सब पति तो पावन बन जाते। बोला शिव बाबा का नाम भी है और वो शिव बाबा निराकार है। क्या निराकार का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि वो बिंदु है सदैव। जब इस शक्ति पर आता है तो जिस तन में भी प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बावजूद भी, साकार में आने के बावजूद भी वो निराकारी स्टेज वाला है। वो कभी भी साकारी स्टेज नहीं धारण करता, निराकार है तो निराकार। परंतु शिव जयंती कहा जाता है, अब जयंती निराकार ज्योति बिंदु की होगी या साकार की होगी? साकार की जयंती होगी। हाँ, ये हो सकता है एक जयंती होती है हद की, पेट से जन्म लेते हैं हद का गर्भ से, और एक जयंती होती है बेहद की, सारे संसार में प्रत्यक्षता होती है, सब जान जाते हैं कि बेहद का बाप आया हुआ है और उनकी ये जयंती, तो जरूर वो यहाँ आते हैं। बाप कहते हैं मैं तो इनमें प्रवेश कर तुमको रास्ता बताता हूँ, इनमें या इसमें? इनमें क्यों कहा? दो आत्माएं हैं, एक में प्रवेश करते हैं तो सुनाते हैं। क्या सुनने सुनाने का काम चलता रहता है? वो है माँ का रूप, और दूसरे में प्रवेश करते हैं तो बाप के रूप में सुनाने के साथ साथ समझाते भी। बाप का काम है समझाना, टीचर के रूप में भी समझाती है। तो मैं इनमें प्रवेश करके रास्ता बताता हूँ, मेरा पार्टी है नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाना। क्या वहां का वासी? स्वर्गवासी। वो स्वर्गवासी पहले कहाँ के वासी थे? नरकवासी। नरक नाम क्यों दिया? क्योंकि नरक नाम इसलिए दिया कि नर ने जो कुछ किया, जो दुनिया बनाई, वो ऐसी दुख की दुनिया बनाई कि सिर्फ नरक के द्वारा ही बनाई जाती है। भगवान वो दुनिया नहीं बना, भगवान नई दुनिया बनाता है और नर अर्थात मनुष्य पुरानी दुनिया बनाई देते। भगवान सतो प्रधान दुनिया बनाता है और मनुष्य तमो प्रधान नार की ये दुनिया बना देते हैं, दुखदायी दुनिया बना देते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है नरक। और भगवान जो दुनिया बनाते हैं उसको कहा जाता है स्वर्ग। नरक आया जाता है इसको, नरक आया जाता है मनुष्य को, मनुष्य सब विकारी होते हैं। क्या मनुष्य मात्र जितने भी हैं शक्ति पर 500-700 करोड़, वो सब विकारी, उन निर्विकारियों को, उन विकारियों को निर्विकारी बनाने वाला एक ही बाप है जो सदैव स्वस्थिति में रहता है। तो स्वस्थिति में रहने वाला जो बनाता है वो है स्वर्ग। नर क्या बनाता है? नरक। और सदा स्वस्थिति में रहने वाला क्या बनाता है? स्वर्ग। वो बना देगा, हमको तो कुछ नहीं करना ना। स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग बना देगा, हमको तो कुछ नहीं करना। हमको कुछ करना है कि नहीं करना है? अगर हमको कुछ नहीं करना हो तो 500-700 करोड़ जो भी नर हैं, मनुष्य मात्र है, वो सारे स्वर्ग में चले जाए। सब स्वर्गवासी बन जाए? बन जाएंगे? नहीं। वो स्वर्गवासी तब ही बनेंगे, और वो ही बनेंगे जो स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करें। अब जो जितनी प्रैक्टिस करे उसमें भी नंबर आ रहे हैं। तो मेरा पार्टी है नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना। अब कोई बने या न बने, पाए देश पति तन में आता हूं। क्या नहीं तो कोई को क्या पड़ी है, पराए देश में जाकर के काम करे है? कोई भी अपना कल्याण करने के लिए पराए देश में जाता है क्या? नहीं। परंतु मैं पराए देश में आता हूं और पतित तन में आता हूं। नहीं तो पतित तन में जो भी धर्म पिताएं आए वो पतित में आकर के क्या बन गए? आप पावन बन गए और ही पतित बन गए, खुद भी पतित बने और अपने पीछे पीछे आने वाले सब फॉलोअर्स को पतित बनाएंगे। ये पतित से पावन बनने की पढ़ाई है, पढ़ाई से पद मिलता है। जो ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं उनको ऊंच पद मिलता है, कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो पद भी कम मिलता है। बाप ही आकर के रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। मैं ही आया हूं, राजयोग की पढ़ाई और किसी ने नहीं पढ़ाई है, ना कोई रात को जानता है। तो मेरी श्रीमत पर ही चलो। क्या राजयोग की पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सकता? तो क्या करना है? सिर्फ मेरी मत पर चलो, औरों की मत पर चलेंगे तो राजयोग की जगह राजभोग सीखेंगे, राजयोग नहीं सीखेंगे। इस समय ही राजयोग सिखाने का मेरा पार्ट है। क्या संगम युग पर ही मैं राजयोग सिखाता हूं, न कलयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कल सतयुग में। फिर सतयुग में तो तुमको सुख मिल जाता है। तो इस राजयोग सीखने में बड़ी गुप्त मेहनत है, राज भी गुप्त है और मेहनत भी गुप्त है। तुम्हारा दान मान पद मतबा सब गुप्त है। पांडव होते ही है गुप्त, इतना गुप्त रह करके पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा होगा। मान लो दान किया और सबको दिखा दिखा के किया तो उसकी ताकत कम हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि दिखावा कर दिया। भारत की परंपरा में ज्ञान और योग का दिखावा करना अच्छा नहीं माना जाता रहा। भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है, योग जुगुत जप मंत्र प्रभाव हल है तब है जब करिए दुराव। जितना जितना उसको गुप्त रखेंगे उतना ही ज्यादा फलदायी होगा, फल प्राप्त करा देगा, नहीं तो निष्फल हो जा रहेगा। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुमको विश्व के मालिक बने की खुशी भी रहनी चाहिए। विश्व के मालिक बनते हैं तो कहा जाता है माया जीते जगत जी, माया के हारे हार हो जाती है। योग बल का आती है या? याद में ही बैठो तो दस चक्रधारी भी बनते हो, तो स्वधर्म में टिकते रहो। चक्कर को भी याद करना है क्या? कई स्थिति में जितना टिकेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या विस्तार में जाने वाली बनेगी। जितना बिंदु रूप आत्मा को याद करेंगे सूक्ष्म स्टेज में टिकते जाएंगे, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी और बुद्धि सूक्ष्म होगी तो ज्ञान की गहराइयों को जास्ती पकड़ेगी तो चक्कर भी जास्ती याद आवेगा। अपन को अशरीरी आत्मा समझना है, भी देह के रूप में नहीं देखना है, अशरीरी आत्मा को देखना है। आत्मा में ही ज्ञान फैलना है। अपन को आत्मा समझ, सामने वाली आत्मा को, सामने वाले व्यक्ति को आत्मा समझ के ज्ञान देंगे तो उसकी बुद्धि में भी ज्ञान ठहरेगा। समय आ जाता है तो फिर कर्मातीत अवस्था को पालेगा। तो फाउंडेशन ही आत्मिक स्थिति का डालना चाहिए। अभी टाइम है याद की यात्रा में जाने का। क्यों? आगे टाइम नहीं रहेगा? आगे टाइम रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं जाएगा। क्यों? टाइम कहाँ, ऊपर परमधाम में चले जाएगा। आगे चल के इतनी जास्ती हलचल बढ़ेगी कि कोई का बुद्धियोग स्त्री रह नहीं सकेगा। जितनी जिसकी प्रैक्टिस हो गई उतना ही रह जाएगा। तो अभी याद की यात्रा की प्रैक्टिस करने का समय है। बाप की याद में रहने से ही तुम्हारी जंत निकलेगी। पांच विकारों की देह अभिमान की जंग से चढ़ी हुई है। जंग तब उतरेगी जब अपन को आत्मा समझे और सामने वाले को भी आत्मा समझे। आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई बहन की भी दृष्टि उड़ जानी चाहिए। ये बहन है इसका क्या मतलब हुआ? देवान है या नहीं है? अगर बहन दिखाई पड़ती है तो देवान है, अगर भाई भाई दिखाई पड़ता है तो कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई एक बाप के बच्चे। इसमें इसमें क्रिमिनल शांत नहीं होगा, इसमें आत्मा आत्मा भाई भाई समझ ले, रंग से भी इनको आत्मा समझाना है, शरीर से भी परे निकल जाना है, नंगे आए थे नंगे वापस जाना है, कोई चीज का आत्मा के ऊपर आवरण न रह जाए, क्या आत्मा नंगी आई थी उस दुनिया में आकर के पांच तत्वों का चोला लिया, तो देह में भी लगाव न रह जाए, देह के पदार्थों में भी लगाव न रह जाए, और देह के जो भी त्रय सज्जन के संबंधी है उनमें भी कोई प्रकार का लगाव न रह जाए, यहां तक कि आवाज से भी परे जाना, क्या ऐसी आदि की स्टेज चाहिए जिसमें आवाज की भी दरकार न, ऐसे नहीं कि अंत तक गीत बजाते रहो, टुन 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 रिकॉर्ड बजाते रहो तब याद आवे, तो निराकारी स्टेज नहीं कहेंगे, निराकारी स्टेज अर्थात आवाज से भी परे, आवाज के भी आधार लेने की दरकार नहीं, सुनने और सुनाने से भी परे, क्या जब ऐसी स्टेज बन जाएगी, और जिनकी भी ऐसी स्टेज बन जाएगी उनको फिर मोबाइल और फोन की दरकार रहेगी नहीं रहेगी, अभी साधनों के आधार पर चल रहे हैं, क्या अभी कच्चे हैं, आत्मिक स्थिति वाले पक्के नहीं है, कोई कोई अनुभव करते हैं कि जो संकल्प हमने किया वही संकल्प उसने किया, जो हमारे मन में बात आ रही थी वही बात बाबा ने कह दी, कभी कभी करते हैं, सदैव सदैव अनुभव नहीं करते, तो बाप कहते हैं अब तुम्हें जाना है अपने धाम, कहते उस ड्रामा में पार्ट बजा करके घर चले जाते हैं, ऐसे तुम भी त्रेसठ जन्मों की शूटिंग का पार्ट पूरा करके वापस घर चले जाते हैं, ये है बेहद की बात, अशरीरी आए फिर यहां आकर के पार्ट बजाया फिर अशरीरी होकर के वापस जाते, मुक्तिधाम में जाकर के जीवन मुक्ति में आने की नालिश तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते, बाईस फरवरी 1968 सबसे नई बात है कि श्रीमद् परिषद की स्थापना हम बच्चे कर रहे हैं, क्या जैसे गांधी जी के लिए कहते थे कि हम गांधी की मत पर चल करके राम राज्य स्थापन करेंगे, परंतु गांधी जी श्रेष्ठ थे क्या, गांधी जी से श्रेष्ठ दुनिया में और कोई नहीं होता, क्या होता है कि नहीं होता है, होता है, गांधी जी भी किसको याद करते थे, अरे अपने से श्रेष्ठ को याद करते थे कि गांधी जी ही श्रेष्ठ थे, गांधी जी किसको याद करते थे, राम को याद करते थे, रघुपति राघव राजा राम patita pao sita तो राम राज्य राम ही लावेंगे या गांधी जी की मत पर राम राज्य स्थापन होगा राम ही राम राज्य ला सकते हैं राम ही राम मंदिर बनावेंगे राम का घर कोई और नहीं बना सकता राम का घर राम राज्य में होगा या रावण राज्य में होगा राम राज्य में होगा तो पक्का कर लेना चाहिए बुद्धि में कि हम राम राज्य स्थापन नहीं कर रहे हैं क्या हम कोई ब्रह्मा की मत पर राम राज्य स्थापन नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा अगर ऊंचते ऊंच होता तो मंदिरों में उसकी पूजा होती मूर्तियां बनती मंदिर बनाए जाते लेकिन ऐसा नहीं है इससे साबित होता है कि दुनिया में जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां मिल रही है जिसके सबसे जास्ती मंदिर मिल रहे हैं और जिसकी सबसे जास्ती पूजा होती है वो ही भगवान का स्वरूप है वो कौन है शिवलिंग दुनिया में सबसे जास्ती लिंगाकार मूर्तियां पाई गई है लिंगाकार का मतलब ये नहीं है कि वो हाथ पांव वाला नहीं था क्या हाथ पांव वाला तो था हाथ पांव होते हुए भी ऐसी तेज धारण कर रखी थी बाप की याद में कि वो बाप समान बन गया निराकारी तेज वाला बन गया इसकी यादगार शिवलिंग दिखाई जाती है बाकी शिवलिंग परम पिता परमात्मा बाप को इतना बड़ा नहीं होता इतना बड़ा होता है वो भी ज्योति बिंदु है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु परंतु वो जिसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करता है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है उस स्वरूप के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं कर सकता कौन सा श्रेष्ठ कार्य है जो दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर सकते वो ऊंचे से ऊंचे बाप ही करके जाता है क्या नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य पतित को पावन बनाने का कार्य सारी पतित दुनिया को पावन बना करके जाता है और अकेला वो कार्य नहीं करता है अकेला करता है क्या नहीं अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता क्या ये दुनिया भाड़ है क्या बहुत बड़ा हेल है हेल हेल माने भाड़ ये दुनिया को खत्म करना अकेले का काम नहीं है उसके लिए बाप के बच्चे चाहिए बाप है आत्मा तो बच्चे भी क्या चाहिए देवहन वाले चाहिए या आत्मा चाहिए आत्मा रूपी बच्चे चाहिए आत्मा में और परमपिता में अंतर क्या है आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली और परम पिता जन्म मरण के चक्र में आने वाला आत्माएं सब भोगता है कोई कम भोगी और कोई जास्ती भोगी कोई आत्मा कोई धर्म गुरु कोई धर्म पिता ये नहीं कह सकता कि हम अब भोगता है कोई कहेगा कह ही नहीं सकता सब आत्माएं भोगी और एक ही है જોવા ભોગતા આત્મા એક હિ ભોગતા હૈ ઓર વો અભોગતા એસા સંસાર કી બડે સે બડે ભોગી આત્મા મેં પ્રવેશ કરતી હૈ. ક્યા બાત હુઈ? બડે સે બડે પતિત મેં પ્રવેશ કરતી હૈ યા થોડે પતિત મેં પ્રવેશ કરતી હૈ? દુનિયા કે બડે સે બડે પતિત મનુષ્ય મેં પ્રવેશ કરતી હૈ. જો જીતના જાતિ કલયુગ કે અંત મેં પતિત બનતા હૈ વો સતયુગ કે આદમી મેં સબસે જાતિ પાવન બનતા હૈ. તો વો સુપ્રીમ સોલ જબ ઇસ સૃષ્ટિ પર આતા હૈ તો પતિતો સે ઘૃણા કરકે આતા હૈ? ક્યા પતિતો સે ઘૃણા કરકે આતા હૈ? ક્યા નહીં, પતિતો સે ઘૃણા નહીં કરતા, પતિતો કો ગલે લગાતા હૈ. ઘૃણા કિસે કરતા હૈ? કામી સે ઘૃણા નહીં કરતા, ક્રોધી સે ઘૃણા નહીં કરતા, લોભી મોહી સે ઘૃણા નહીં કરતા, અહંકારીઓ સે ઘૃણા. ઓર ઘૃણા ભી કૈસી? નહીં, અંદર કા પ્યાર ઓર બહાર કા પ્યાર વો કોઈ સમજ નહીં સકતા. ક્યા? બાપ કે પાસ અંદર કા પ્યાર રહેતા હૈ, બહાર કા પ્યાર નહીં રહેતા. પ્યાર કે ચિત્ર મેં દેખો, લેફ્ટ સાઈડ કી જો સબસે બાદ વાલી જડ હૈ, નાસ્તિક ધર્મ કી જડ, વો સબસે નજદીક હૈ યા સબસે દૂર હૈ? સબસે નજદીક હૈ તો દિખાને કે લિયે સબસે નજદીક, ઓર અંદર સે સબસે જાગતી હૈ. બાપ જિસ ઉદ્દેશ્ય કો લેકર ઇસ દુનિયા મેં આતા હૈ, રાજયોગ સિખા કરકે રાજાઈ દેને કે લિયે આતા હૈ, વો રાજાઈ નાસ્તિક ધર્મ વાલો કો નસીબ નહીં હોતી. તો કામીઓ કો પ્રેફરન્સ મિલ જાતા હૈ. દુનિયા મેં જીતને ભી વિધર્મી હૈ ઉન વિધર્મીઓ મેં સબસે જાસ્તી મહાકામી ધર્મ કોન સા હૈ? ઇસ્લામ ધર્મ. ઓર સબસે જાસ્તી રાજાઈ કિસને કી હૈ નરક કી દુનિયા મેં? ઇસ્લામ ધર્મ ને કી. તો બંદરપુર બાત હો ગઈ. કિતને લંબે સમય તક રાજાઈ ઓર કોઈ ધર્મ ને નહીં કી. ભગવાન પવિત્રતા સ્થાપન કરને આતા હૈ યા અપવિત્ર બનાને કે લિયે આતા હૈ? આતા તો પવિત્ર બનાને કે લિયે, લેકિન અપવિત્ર સે ઘૃણા ઘૃણા નહીં કરતા. કહેતા ભી હૈ બચ્ચે નહીં, કામી કો પતિત કહા જાતા હૈ, ક્રોધી કો પતિત નહીં કહા જાતા. માના ક્રોધિયો કો પાવન બનાને કે લિયે આતા હૈ યા કામી જો પતિત હોતે હૈ મહાકામી મહાપતિત ઉનકો પાવન બનાને કે લિયે આતા હૈ? જો કામી હોતે હૈ ઉનકો જો પતિત કહે જાતે હૈ ઉનકો પાવન બનાને કે લિયે. કોઈ કહે યે તો બડી અચ્છી બાત હૈ, બાપ પતિતો કો તો ઘૃણા નહીં કરતા તો ભૂત પતિત બન લે. નહીં, ભગવાન બાપ આકર કે લક્ષ્ય દેતે. ક્યા લક્ષ્ય દેતે? નર સે નારાયણ બનના. નર પતિત કો કહા જાતા હૈ ઓર નારાયણ પાવન કો કહા જાતા હૈ. તો જો નારાયણ બનને કા લક્ષ્ય લેને વાલા હૈ ઉસકે અંદર લક્ષ્ય હોગા તો લક્ષણ કૈસે આવેંગે? પાવન બનને કે લક્ષણ હોંગે યા પતિત બનને કે લક્ષણ હોંગે? પાવન બનને કે લક્ષણ હોંગે. અગર લક્ષ્ય નહીં લિયા હૈ તો લક્ષણ નહીં આ સકે. જ્ઞાન મેં આને કે બાદ, બાપ કો પહેચાનને કે બાદ, जो जितना जल्दी लक्ष्य को धारण कर लेता है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, वो उतना ही जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करने से ऊंच बन जाता है। लक्ष्य की महिमा, लक्ष्यहीन है तो लक्षणहीन बनेगा, लक्ष्य धारण करता है तो लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इसलिए बोला ड्रामा के प्लान अनुसार और कलप पहले मुआफिक बच्चे श्रीमत को धारण कर रहे हैं। इसकी श्रीमत जो ऊंचते ऊंच पाठधारी है, उस ऊंचते ऊंच पाठधारी को पहचान करके ऊंचते ऊंच की मत को धारण कर रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में कि नई दुनिया कैसी होगी, सत्युग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। ब्राह्मण इस बात को अच्छी रीति जानते क्या, ये जो नई दुनिया होगी उसमें एक ही धारणा के ऊपर सारे चलेंगे। एक राजा की जो धारणा होगी उसको सब फॉलो करेंगे। मान लो नर से नारायण बनने वाला हो या सत्युग में प्रिंस बनने वाला नारायण बनता हो, उसकी जो धारणा होगी, विशेष धारणा क्या होती है देवताओं की, स्वर्ग में जो देवताएं होती हैं उनकी विशेष धारणा क्या होती है जो नरक में मनुष्यों की नहीं होती है, कैसी पवित्रता। हाँ, जो प्रश्न है उसकी दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी। उसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जो भी देवताएं होंगे सब मर्यादा पुरुषोत्तम होंगी, किसको फॉलो करेंगे, यथा राजा तथा पिता, किसको फॉलो करेंगे, जो उनका राजा नारायण होगा नारायण राजा को ही सब फॉलो करेंगे। जो नारायण की धारणा है मर्यादा पुरुषोत्तम की, वो विशेष धारणा प्रजा में एक एक की होगी, कोई विपरीत धारणा में चलने वाला नहीं होगा। उस बात को ब्राह्मण लोग अच्छी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। बाप ने समझाया है नई दुनिया में नया राज्य होगा, राज्य भी नया और राजा भी नया होगा। इस पुरानी दुनिया का कोई भी राजा नहीं होगा, पुरानी दुनिया ही नहीं होगी। ये तो सबको खुशखबरी सुनानी चाहिए, हम फिर से ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी निकालो, सबको बधाइयां दो, शिव बाबा परम पिता फिर से ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। नक्शहर में समझाना चाहिए कि पवित्र देवी देवताओं का राज्य था, अभी वो पवित्र देवताएं नहीं है, बाकी से पूर्ण के चित्र मिलते हैं, कहां मिलते हैं वो चित्र, कहां से उठाए। आज से 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा आदि की गुफाओं में जो चित्रकारी की थी चित्रकारों ने, कलाकारों ने, वहां से वो चित्र उठाए। उन चित्रों के आधार पर मेरे शास्त्र बनाए गए और शास्त्रों के आधार पर सारी दुनिया में वो चित्र फैल गए। अभी बेहद का बाप कहते हैं अपना गवाया हुआ राज्य ले लो, तुम्हारी खुशखबरी ही है और है भी सहज राज्य। उनको बाप से सुरक्षा बरसा दी यज्ञ के बाप से सुरक्षा बरसा मिलता है और त्रेसर जनों में हद के बाप से कौन सा वर्षा लेते हैं नारकीय वर्षा लेते हैं शिव जयंती मनाते हैं शिव बाबा आते भी हैं संगम युग पर क्या सिर्फ संगम युग पर नहीं आते शिव पर आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं क्या याद रहना चाहिए संगम युग याद न रहे संगम युग के साथ साथ पुरुषों में उत्तम कौन है उत्तम के उत्तम पाठधारी कौन है वो भी मुझे में याद आना चाहिए उत्तम के उत्तम पुरुष देवी देवताएं थे जिनके चित्र मिलते भारत में उनके बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं कौन सा मंदिर भव्य मंदिर है लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बने हुए शास्त्रों में उनकी कोई ग्लानि नहीं 33 करोड़ देवताओं में से सबकी ग्लानि है क्या हर एक देवता में कोई न कोई डिफेक्ट रहा है और उस डिफेक्ट के आधार पर उनकी ग्लानि जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं कृष्ण काला तो कोई काला कर्म किया होगा कि नहीं किया होगा है? अरे कृष्ण ने कोई काला कर्म किया होगा कि नहीं किया होगा काला कर्म किया होगा तो कृष्ण को काला दिखाते हैं फिर कृष्ण को गोरा भी दिखाते हैं माना वो काला पर खत्म हो गया तो गोरा लेकिन नारायण को सदैव गोरा ही दिखाते हैं नारायण को काला नहीं दिखाते हैं नारायण की कोई ग्लानि नहीं है तो ऐसा देवता तुमको बनाते निष्कलंक जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं होता है अभी तो रावण राज्य क्या नारायण का राज्य नहीं है रावण माने रुलाने वाले का राज्य है नारायण का राज्य नहीं है नारायण कैसा जिसका घर नार अर्थात ज्ञान जल में ही जिसका घर है ज्ञान सुखदायी होता है यह दुखदायी होता है जो ज्ञान रूपी जल में रहने वाला है वो सदैव सबको सुख ही देगा या दुख भी देगा बहुत से ऐसे हैं ज्ञान सुनाने वाले बेसिक में भी है एडवांस में भी है बेसिक ज्ञान सुना करके भी दुखी कर देते हैं और एडवांस ज्ञान सुना करके भी दुखी कर देते हैं तो उनका ज्ञान है या अज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो दूसरों को सुख न दे सके ईश्वर का ज्ञान ईश्वर को सुखदाता कहा जाता है या सुखदाता कहा जाता है सुखदाता कहा जाता है सुखदाता की दी हुई चीज जब हम दूसरों को देते हैं तो दूसरों को क्या अनुभव होना चाहिए कई अनुभव होना चाहिए तो अभी रावण राज्य खत्म होने वाला है दैवी राज्य जिंदाबाद होता है क्या जिंदाबाद होगा दैवी राज्य जिंदाबाद और रावण राज्य मुर्दाबाद ये तो अच्छी बात है ना गांधी जी ऐसे कहते थे कैसे कहते थे राम राज्य हो तो अभी ये स्थापन हो रहा है हम अखरे अखरे चित्रों से समझाए रहे जो समझेंगे वो ही राज भाग लेंगे वो ही गीता की इपिसोड वाली महाभारत लड़ाई सामने खड़ी पहले पहले सखी पर पवित्र देवताओं का राज्य था। गीता के भगवान ने आकर के नरको नारायण बनाया था और अब फिर से क्या बना रहे हैं? नर से नारायण जैसा देवता बना रहे हैं। अगर नारायण नबी बने तो यथा राजा नारायण तथा प्रजा बन जाए। नंबरवार प्रजा भी होती है, नारायण के नंबरवार राज्याधिकारी भी होते हैं, एक जैसे होते हैं। नंबरवार राज्याधिकारी होते हैं, नंबरवार राजधानी स्थापन होती है। तो राजयोग के द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है, जो पुरुषार्थ करेंगे वो पालेंगे। अच्छा, ओम श्री।